السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. रमज़ान अल मुबारक कुरान करीम की तिलावत करने का महीना, कुरान करीम के साथ वक्त देने का महीना, कुरान करीम को समझने का महीना और इसकी अंदर गौर व फिक्र करने का महीना। क्योंकि ये महीना वो है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही की शुरुआत हुई थी। आपको मालूम है कि लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल हुआ था, लिहाजा इस महीने को हमें कुरान करीम के लिए डेडिकेट करना चाहिए। यानी हमने जो काम करने हैं इस महीने में, उसमें हमारे लिए टॉप ऑफ द लिस्ट जो काम होना चाहिए वो कुरान करीम है। एंड इसके साथ आप जितना वक्त गुजारें उतना ही कम है, जितना वक्त गुजारें। अब देखें, जो इस कुरान को आज थामेगा और इसके साथ वक्त लगाएगा, कयामत के दिन यही कुरान उस बंदे को लेकर जाएगा अल्लाह ताला के अर्श के आगे। और वो दिन जो 50,000 साल का दिन, कयामत का दिन है, लेकिन कुरान का इल्म हासिल करने वाले के लिए और उस पर अमल करने वाले के लिए कयामत का ये लंबा दिन सिर्फ इतना सा होगा जितना जोहर से असर के वक्त का, इतना सा टाइम। और ये लोग वो होंगे कि जो अल्लाह ताला के हाँ वो मकाम पाएंगे, जो कि माहिर कुरान का, आपको पता है कि वो मकाम है कि वो फरिश्तों के साथ होगा, कातिबीन फरिश्तों के साथ। और इसके लिए इन कुरान शिफात करेगा, कुरान सिफारिश करेगा, ये उन खुशकिस्मतों में से होगा। कुल मखलूक जहां पे खड़ी हुई है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, वहां पे किसी के लिए कुरान खड़ा होके सिफारिश करने लगे, उसके लिए झगड़े, तो कितनी बड़ी सआदत की बात है। वहां पे कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा मगर कुरान के साथ जिन्होंने वक्त लगाया होगा उनके लिए, ये उस दिन भी ये रिश्ता कायम रहेगा, इसके साथ जो ताल्लुक था वो उस दिन भी शो करेगा। और ऐसे लोगों को उन सफों में ले जाके खड़ा किया जाएगा जहां पे ऐसे फरिश्ते हैं जो के, यानी बड़े माहिर फरिश्ते, बड़े काते फरिश्ते, कुरान के माहिर को उनके साथ खड़ा किया जाए, VIPs की सफ में। आप दुनिया में एक VI के साथ एक तस्वीर लेने को जाएं तो कितना मुश्किल होता है, और कहां फरिश्तों का साथ मिल जाना, ये कितना बड़ा एजाज है। और कुरान कहेगा कि अल्लाह तूने इसको फरिश्तों के साथ तो खड़ा कर दिया है, इसको और भी इनाम अता फरमा। कुरान सिफारिश करेगा, कुरान लेकर जाएगा, ऐलान होगा, है कारी कुरान, है माहिर कुरान, है हाफिज कुरान, है कुरान को पढ़ने वाले, समझने वाले, अमल करने वाले, आगे बढ़, अपने इनाम को वसूल कर, ये उसका इनाम है। लेकिन कुरान इतने तक के ऊपर इसको काफी नहीं करार देगा, वो कहेगा अल्लाह ताला इसको और इनाम दे। तो अल्लाह ताला हुक्म देगा कि कुरान की सिफारिश को कबूल किया जाए, उस आदमी को इज्जत का लिबास पहनाया जाएगा, जन्नत के उसको कपड़े दिए जाएंगे, और कुरान कहेगा या अल्लाह ताला इतना नहीं, इस पे और भी कुछ इनायत फरमाए इसको। अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल करेगा और हुक्म देगा, फरिश्ते ताज लेकर आएंगे, उसके सर पे ताज सजाया जाएगा, हुक्म होगा उसके वालदैन कहाँ हैं, उन दोनों के सरों पे भी ताज सजाया जाए, उनके भी सरों पे ताज सजाया जाएगा। इमाम इब्नुल कय्यम फरमाते हैं कि उस ताज का जो एक मोती होगा वो सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। तो खुद सोचें कि ये खानदान पूरी मखलूक के लिए कितनी तवज्जो का मरकज बन जाएगा। यानी सब देख रहे होंगे इस खूबसूरत खानदान को, यहाँ पे वालदेन को भी ताज मिले और जो कुरान करीम के साथ वक्त लगाने वाला था उसको भी। दुनिया सारी भी बेच दी जाए ना, तो उस एक ताज के मोती की भी कीमत नहीं दी जा सकती। फिर कुरान यहीं तक नहीं रुकेगा, कुरान की सिफारिशें हैं वहां पे ये सारी। वो कहेगा या अल्लाह ताला इसको और अता फरमा, इससे राजी हो जा, कि बेशक ये सारे इनामात अल्लाह ताला की रजा की ही अलामत है, मगर अल्लाह तू इससे राजी हो जा। तो अल्लाह ताला सब के सामने सबको गवाह बना के उस बंदे के साथ अपनी रजा का ऐलान करेगा। तो एक तड़प होनी चाहिए हमारे अंदर कि मैं किसी तरह माहिर कुरान बनूं, कारिये कुरान बनूं, कुरान के साथ मेरा वक्त लगे। और ऐसे ही नहीं बस थोड़ा बहुत चलो पढ़ लिया, थोड़ा बहुत चलो कर लिया, नहीं इतना कि यानी मैं कुरान पढ़ पढ़ के कभी थकूं ही ना। अल्लाह मुझे कुरान को ऐसे मेरे दिल की बहार बना दे। अब वो पता है कि एक किताब में लिखवा था इमाम मस्जिद नबी शेख अब्दुल मोहसिन, उनकी बहन का तस्करा है लिखा हुआ, कि कुरान के साथ उनका इतना शगफ था, इतनी कुरान से मोहब्बत करती थी कि हर वक्त उनका दिन रात का साथी था कुरान। वो अपनी जवानी के अयाम में भी घर में और खेत के कामों में शुगल के दौरान हिफ्स शुदा कुरान की तिलावत करती रहती थी। यानी जो उनको हिफ्स था उतना कुरान की तिलावत करती थी। यानी चलते फिरते जब घर के काम भी कर रही हैं या अपने बाहर के काम कर रही हैं, और बसा औकात घर वालों के साथ इस वजह से नहीं बैठती थी कि किताबुल्लाह की तिलावत कर सके। हमें शौक होता है ना हम घर वालों के साथ गपशप करें बैठें, वो सिर्फ इस वजह से कि वो बस मैं तिलावत कर लूं। और अपनी उम्र के आखिरी 20 सालों में, कि जब वो बच्चों की शादियों से भी फारिग हो गई और उनके शौहर भी इंतकाल कर गए, तो वो सुबह से लेके मगरिब तक का अक्सर वक्त तिलावत कुरान में सर्फ करती थी, और इसमें बिल्कुल वक्फा नहीं करती थी सिवाय नमाज की अदायगी के, खाना खाने के, या जोहर के बाद क्या लूला के, या घर आए मेहमानों से मुलाकात करने की, दैट्स इट। तो ये इनकी पोती लिखती हैं कि एक रोज मैंने उनकी कसरत तिलावत के सबब कहा कि आप टेप रिकॉर्डर से कुरान क्यों नहीं सुन लेती। तो उन्होंने कहा अगर तुम भूखी हो तो क्या तुम खाना खाने वाले को देखोगी या उसके साथ खाना खाओगी। मैंने कहा उसके साथ खाने में शरीक होंगी। तो कहने लगी यही मामला तिलावत का भी है, खुद तिलावत करना कुरान की तिलावत सुनने से ज्यादा बेहतर है। हालांकि अगर आप सुने भी तो वो भी अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़ सकते या आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो आप सुन भी लेना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाया था कि अब्दुल्ला मेरे लिए कुरान को पढ़ो। आपको पता उनकी आवाज़ कितनी खूबसूरत थी। तो अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाने लगे या रसूल अल्लाह कुरान मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, आपके ऊपर तो खुद कुरान उतरा है, तो मतलब मैं आपको कैसे पढ़ के सुना सकता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं मुझे दूसरे से सुनना अच्छा लगता है। तो बाज दफा किसी कारी की आवाज बड़ी खूबसूरत सी होती है, दिल में उतर जाती, जिस कारी की भी आवाज आपको पसंद हो आप उसकी आवाज में कुरान करीम की तलावत सुने। और आप देखें आप तो इतनी तरह के कारी और बहुत तरह की आवाजें आपको इतनी आसानी से अपने फोन के जरिए मिल जाती हैं, आपको किसी टेप रिकॉर्डर की जरूरत नहीं। तो पहले जमाने की बात हो रही है, लेकिन आपको आज के जमाने में कोई टेप रिकॉर्डर नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं ऐसा चाहिए, कंप्यूटर के जरिए फोन के जरिए आप आराम से सुन सकते हैं, लेटे लेटे सुन सकते हैं। क्या आप तवज्जो उसके ऊपर रखें और बस सुनते रहें। आपको पता है कुरान करीम सुनने का भी तो असर होता है। हजरत उमर के ईमान लाने का बाइस क्या बना था? कुरान करीम सुना ही था उन्होंने, पढ़ा तो नहीं था अभी। तो सुनने का भी इंसान की तबीयत के ऊपर असर होता है। आप देखेंगे जब कुछ अरसा आप एक ही कारी को सुनते रहेंगे ना, तो खुद बहुत आपकी तिलावत भी वैसी ही होना शुरू हो जाएगी, आपका लहजा वो बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको भी एक नेकी समझे कि मैंने सुनना है। तो अब जब वो, ये तब की बात है जब वो इतनी बूढ़ी नहीं थी जिनकी मैं वाकया सुना रही हूँ, लेकिन जब वो बहुत जयीफ हो गई नहीं थी ना, उससे ज्यादा पढ़ा नहीं जाता था, तो फिर ज्यादा वक्त कुरान सुनने में गुजारती थी। तो एक मरतबा किसी करीबी खातून ने कहा कि कसरत तिलावत से आपका सीना तंग नहीं होता, यानी आप तंग नहीं आ जाते? तो बड़े ताज्जुब से कहने लगी कि क्या भला कुरान की मौजूदगी में या कुरान की वजह से मेरा सीना तंग होगा? तो तुमने ये नहीं सुना कि याद रखो अल्लाह के जिक्र से तो दिल पुरसकून होते, मुतमईन होते हैं। सुभान अल्लाह। देखें ये अब ये को बहुत ज्यादा पुराने जमाने की बात नहीं है, लेकिन ये देख लें कि सुभान अल्लाह ऐसे वक्त के अंदर भी लोग रहे हैं जिन्होंने कुरान करीम को इतना वक्त दिया, जिन्होंने कुरान करीम को पढ़ने के लिए इतनी एफर्ट लगाई। अब चाहे आपके पास वक्त हो या नहीं हो, लेकिन कितने लोग हैं जो फिर भी कभी उनकी प्रायोरिटीज में भी ये होता है कि अच्छा अगर मुझे वक्त मिल जाए तो मैं कुरान की तरफ भागूं, और जब वक्त निकल आए तो फिर सबसे पहले कुरान पकड़ के बैठ जाए। कितनी दफा ऐसा होता है? देखिए एक होता है ना, वक्त है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन क्या ये मेरी प्रायोरिटी में है? मैंने इसके बारे में सोचा है कि मैं उसके बगैर उदास हो जाऊं कि हाय बस आज तो एक ही सिपारा पढ़ा है, एक दिल कर रहा था और पढ़ूं। जाहिर है हर एक की मजबूरियां, हर एक को पूरा पूरा दिन बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेकिन तड़प है इतनी, तलब है इतनी, चाहते हैं क्या ऐसा? और क्या जिस वक्त फरागत मिलती है, कभी तो फरागत मिलती होगी, तो झट से क्या कुरान निकाल लेते हैं, चाहे फोन पे है या आपके पास पॉकेट साइज कुरान आपके पर्स में है, या तो आप क्या फौरन से निकाल के पढ़ना शुरू करते हैं कि चलो चाहे दो आयते ही पढ़ लूं? ऐसा होता है क्या? इतनी मोहब्बत है आपको कुरान से? कुरान तो वो चीज है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जमीन पे कुछ लोग हैं जो अल्लाह ताला के अहल हैं, जिनको अल्लाह ताला अपना अहल करार देता है, यानी जैसे उसके स्पेशल लोग होते ना, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, लोगों में ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के अहल है, उसके उसके प्यारे बंदे हैं, समझ लें उसके अपने बंदे हैं, जैसे हम कह देते हैं ना ये तो उसका अपना बंदा है जी। तो सहाबा ने पूछा कि वो कौन लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम अहलुल कुरान, हम अहलुल कुरानी अहलुल्लाही व खासा, ये कुरान वाले हैं जो अल्लाह के अहल हैं और उसके स्पेशल बंदे हैं। ये किसी और चीज के ऊपर ये सादत नहीं बयान की गई, ये बात नहीं कही गई जो कुरान के लिए कही गई है कि ये कुरान वाले हैं। तो कुरान करीम को तो इस महीने में तो ऐसा बना लें कि यानी कोई ऐसा मिनट भी हमें फारिग मिले तो वो हम कुरान के लिए निकालें, कोई लम्हा ऐसा फारिग मिले, चाहे 5 मिनट ही आपके पास। हम सोचते ना 5 मिनट से कुछ नहीं होता, 5 मिनट में क्या हो सकता है? नहीं, 5 मिनट में भी बहुत कुछ हो सकता है। 5 मिनट में आप आराम से 5 आयतें पढ़ सकते हैं। आप कहते हैं 10 मिनट से क्या फायदा, 20 मिनट से क्या? हमारे लिए तो कितने कितने घंटे भी गुजर जाते हैं, तो हम सोचते हैं इसमें क्या करना है। तो ऐसे नहीं करना, आपने छोटे छोटे जो टाइम स्लॉट्स आपके पास हो ना, उनसे भी फायदा उठाना है, और उनको भी समझना है कि ये कीमती है और इसके अंदर मैं इतनी आयतें पढ़ सकती हूँ। अगर हर हर्फ पे मुझे आम दिनों में ही 10 नेकियां मिलती तो रमजान का सोच लेंगे कितनी नेकी मिलती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहि सलाम के साथ दौर किया करते थे कुरान करीम का, उनको सुनाते थे। तो आप सोचें कि नबी सलाम भी जो कि कुरान के हाफिज पहले ही थे और उनके ऊपर ही कुरान उतरा था, वो भी कुरान की ऐसे तिलावत करते थे। तो इसलिए हमें इन दिनों को कुरान के लिए खास करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनको अल्लाह ताला अपना अहल करार दे और अपने खास बंदे। देखिए हजरत हसन बसरी फरमाते ना, दुनिया के कुल 3 ही दिन हैं, एक वो जो कल गुजर चुका वो तो खत्म हो गया, एक जो कल आने वाला है उसका पता नहीं आएगा या नहीं, और एक जो आज का दिन है यही हमारे पास है, इसमें ही नेक अमल कर। तो इसमें जो कुछ कर कर सकते ना वो कर जाए, क्योंकि कल का तो पता नहीं, और जो पिछला कल गुजर चुका उसके ऊपर तो हम बस पछताते ही रहते हैं कि उसमें हम कुछ नहीं कर सके। लिहाजा इससे बेहतर टाइम और क्या गुजर सकता है जो हमारा कुरान के साथ गुजरे। इस वक्त अपने उन चीजों को पीछे कर दें जो हमारे टाइम वेस्टर्स हैं, जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज हैं, जो भी फोन्स पे बहुत ज्यादा देखना है, एक सिर्फ टाइम रखें जिसमें मैंने फोन को चेक करना है, बस उसके अलावा नहीं। आप जानते हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक बूढ़े भी हो गए थे तो कुरान का इल्म बस उसी के साथ लगे रहते थे, तालिबे इल्म रहे थे। तो किसी ने पूछा अब कब तक तालिबे इल्म रहेंगे, फरमाया उम्मीद है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक। और फिर फरमाया कि भला जिसके लिए हर चीज दुआ करती हो, हत्ता कि समुंदर की मछलियां भी और चींटियां अपने बिल में भी, आपको पता है ना तालिबे इल्म के लिए दुआ करती हैं, तो वो रास्ता मैं कैसे छोड़ सकता हूं, मैं फिर कैसे ये रास्ता छोड़ दूं तालिबे इल्म का। तो आज तालिबे डॉलर तो बहुत है, तालिबे दुनिया भी बहुत है, लेकिन तालिबे इल्म जो कुरान के इल्म का तालिब हो वो कितने हैं, कितना शौक है। लिहाजा इस चीज की फिक्र करें कि क्या हमारा सिफारशी कुरान होगा कयामत के दिन या नहीं होगा, क्या मैं चाहती हूं कि कुरान की शिफात से मुझे इतनी इज्जतें उस दिन मिल जाएं कि दुनिया देखे, ये मेरी चाहत है या नहीं। आज कुरान आपको लगता है कि एक किताबी तो है, लेकिन कल जब आप इसकी वहां पर इसकी बड़ी पहुंच देखेंगे कि बड़ा, जैसे कहते हैं ना उसके साथ ताल्लुकात बनाओ वो बड़ा आदमी है, या उसके बड़ी कॉन्टेक्ट्स हैं या उसकी बड़ी पहुंच है तो उसके साथ कॉन्टेक्ट्स बनाओ, तो कुरान की पहुंच बहुत बड़ी है, ये इंसान को जो अपना पढ़ने वाला को उस जन्नत तक पहुंचा के छोड़ेगा। इसलिए इसमें कोताही नहीं करनी, और जो इंसान अपना बहुत ज्यादा वक्त कुरान के साथ गुजारता है तो हमें हदीस से पता चलता है अल्लाह ताला उसको बिन मांगे अता फरमा देता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान कुरान में इतना मशगूल रहता है कि उसको दुआ मांगने का भी वक्त नहीं मिलता, क्योंकि वो कुरान ही इतना पढ़ता था दुआ मांगने का भी नहीं टाइम मिलता था, टाइम ही गुजर जाता था, तो अल्लाह ताला उसको उससे भी ज्यादा अता फरमाता है, जो लोग मांग के लेते हैं ना उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला उसको अता फरमाए बिन मांगे ही। सुभान अल्लाह। तो इसलिए इसको समझें कि ये हमारे लिए वहां पे काम आने वाला है और यहाँ पे भी हमारी जिंदगी को संवारने वाला है, इसके मुताबिक अपने अखलाक संवारें, इसके मुताबिक अपने मामलात बनाना शुरू करें। और खास तौर पे अखलाक में तो मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा कुरान करीम को देखेंगे, जो अखलाक ये हमें बताता है वैसे शायद हमें कोई भी नहीं सिखा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे, चलता फिरता कुरान, यानी आपका हर अखलाक हर मामला कुरान के मुताबिक था, और जो इंसान इसको अपना इमाम बनाएगा ये कयामत के दिन उसको जन्नत तक पहुंचाएगा। इसको इमाम बनाएं, इसको पीछे ना करें, इसको आगे करें, ये क्योंकि ये इसी इतनी बड़ी शान है इसकी, ये इतना बरकतों वाला कलाम है, ये सारी जिंदगी को बरकतों से भरने वाला है, इसको आगे रखा तो इंसान की जिंदगी भी संवर जाती है, इस दुनिया की भी और आखिरत की भी। इमाम इब्नुल कय्यम फरमाते हैं ना, दीन सारे का सारा अखलाक है। जो तुमसे अखलाक में बढ़ गया उसने तुमसे दीन में फौकियत हासिल कर दी। तो अखलाक को संवारे कुरान के जरिए। अल्लाहुम्मा हदिनी इला अहसन इल अखलाक, ये दुआ भी है ना, ला यहदी बि अहसनिहा इल्ला अंता। ए अल्लाह मुझे मेरी रहनुमाई कर अच्छे अखलाक की तरफ, और अच्छे अखलाक की तरफ रहनुमाई कोई नहीं कर सकता सिवाय तेरे। वसरिफ आन्नी सय्यिअहा ला यसरिफ आन्नी सय्यिअहा इल्ला अंत, और अल्लाह मुझे बचा ले इसकी बुराई से, और इसकी बुराई से बच नहीं सकती सिवाय इसके कि तू बचा ले। तो अपने अखलाक को संवारें कुरान के जरिए, इसको खूबसूरत बनाएं और अखलाक पे बहुत तवज्जो दें। ये ना हो कि रोज़ा रख लिया हमने तो इसके बाद हमारा मूड ऑफ रहता है, हम चिड़चिड़े हो गए, हमें चूंकि जब रोज़ा लगा तो हमें बस किसी के साथ बात करने का दिल नहीं चाहता, जो बात करना चाहता है हम उसके साथ इतनी बुरी तरह पेश आए या टूट टूट के उसको जवाब दें इतना, ऐसा कि जो बदअखलाकी के ज़ुमरे में आता है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए हमारा अखलाक, बल्कि हमारा अखलाक और ज्यादा खूबसूरत हो जाना चाहिए रमजान में, इसलिए क्योंकि रमजान रहमतों का महीना है, कुरान का महीना है। इसके अंदर हम कुरान इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं तो हमारे अखलाक पे भी तो फर्क आना चाहिए कि पता चले ये कुरान पढ़ने वाली है, ये अहलुल कुरान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे कयामत के दिन। सबसे ज्यादा वो लोग जिनके अखलाक अच्छे थे दुनिया के अंदर। तो अगर हमारे अखलाक नहीं संवरे और हमारे अखलाक बुरे ही रहे तो फिर तो पता नहीं हम कुरान क्या पढ़ रहे हैं कि वो वही है कि कयामत के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे लोग होंगे जो तो कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नहीं उतरेगा। तो ये एक बुरी बात है कि कुरान अगर हलक से ना उतरे, यानी कुरान अंदर गया ही नहीं, बस जुबान पे ही रहा। अब हम आज देखते हैं कि नमाज में हम सजदे तक पहुंचे थे, अब सजदे के दरमियान हम बैठते हैं, और वो जो बैठने का टाइम होता है वो ऐसा होता है कि जिसमें आपको यानी आराम से जरा बैठना है, ऐसे नहीं कि उठे ही अभी कमर सीधी हुई है फिर दोबारा दूसरे सज्दे में चले गए, ये नहीं। वो भी एक स्टेप है नमाज का जिसको कहते हैं जलसा। अब इस वक्त के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीहात हमें सिखाई हैं, जैसे एक तस्बीह बहुत ही आसान, अगर आपको कोई भी तस्बीह नहीं आती तो ये तस्बीह तो मुश्किल है ही नहीं। और ये क्या है, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से फरमाया करते थे, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे रब मुझे माफ कर दे। इसी तरह एक और अबू दाऊद के अंदर एक और रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान ये मांगते थे। इतनी खूबसूरत इतनी जामे दुआ है, अल्लाहुम्मग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी मुझ पे रहम फरमा दे, वआफ़ीनी ए अल्लाह ताला मुझे आफियत दे, वहदीनी अल्लाह मुझे हिदायत दे, वरजुकनी ए अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा दे। तो इसमें रहम भी मांग लिया, आफियत भी मांग ली, बख्शिश भी मांग ली, हिदायत भी मांग ली और रिस्क रोजी भी मांग ली। और एक रिवायत में वजबूरनी भी है, इन सारे ही कामों को सीधा कर दे। तो आप इन दोनों दुआओं में से एक दुआ आप मांग सकते हैं दोनों सजदों के दरमियान, लेकिन इत्मीनान के साथ बैठ के, और मांगना है कोई एकदम फर फर पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इस मांगने में तलब होनी चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए, पता चलना चाहिए कि कुछ चाहिए है मुझे, ऐसे ना हो कि हम इतनी तेज मांगे कि वो बजाय इसके कि कोई मांगना ऐसे लगे कि जैसे कोई बेअदबी कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं मांगना। चलते हैं आज की दुआ की तरफ। आज की दुआ भी बहुत अहम दुआ है इस लिहाज से कि हम सब डरते हैं अल्लाह ताला के गज़ब से, उसकी नाराज़गी से और उसकी सज़ाओं से।
और उसके अजाबों से। तो हमें डर लगता है, लेकिन अब हम कैसे उनसे बचें? कौन हमें बचा सकता है? अल्लाह ताला ही बचा सकता है, उसके सिवा तो कोई भी ताकत नहीं है जो उसके अजाब से, उसके गुस्से से या उसकी सज़ा से हमें बचा सके। और दूसरे ये कि हम उसकी उतनी तारीफ़ भी तो नहीं कर पाते जिस तारीफ़ के वो लायक है। तो आज की इस दुआ के अंदर ये सब चीज़ें कवर्ड हैं, और ये भी मसनून दुआ है। और अहम चीज़ इसके बारे में एक और ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सजदे में भी किया करते थे। तो अगर आप लोग इसको याद कर लें तो अपने सजदे में इसको मांगा करें। इस दुआ में बहुत आजी है। और दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा आऊदु बी रिदाक मिन सखतिक। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आती हूँ तेरे गज़ब से या तेरी नाराज़गी से, तेरी रज़ा के ज़रिए, यानी तू मुझसे राज़ी हो जा, इस तेरी रज़ा के ज़रिए, तेरी नाराज़गी से मैं तेरी पनाह में आती हूँ। आपने देखा ना, एक बच्चा होता है, छोटे बच्चों के साथ अक्सर ये होता है कि माँ अगर उसको एक थप्पड़ भी लगा देना तो वो रोता हुआ किसी और के पास नहीं जाता, वो किधर आता है भाग के, वो आके वापस माँ की ही टांगों से चिमट जाता है। उसको पता है कि और कोई नहीं है, अगर मारेगी भी तो यही है, मेरी माँ ही है, मैंने इसी के पास मेरी पनाह है। तो है अल्लाह, तेरे गुस्से को और तेरी नाराज़गी को हम किसी और ज़रिए से नहीं ख़त्म कर सकते सिवाय इसके कि तेरे ही पास भाग के आ जाएं, कि तू हमें अपनी पनाह में ले ले, तेरी रज़ा के ज़रिए कि तू हमसे राज़ी हो जा, उसके ज़रिए से हम तेरे नाराज़गी से बचना चाहते हैं। और बी मुआफ़ती का मिन अकूबतिक, और आफ़ियत के ज़रिए तेरी सज़ा से, यानी तेरी सज़ाओं के आने से हम कैसे बच सकते हैं? कि तू ही हमें आफ़ियत दे दे, तो बस तब बच सकते हैं। आऊज़ बी का मिन का, सुभान अल्लाह, और हम तेरी पनाह चाहते हैं तुझसे, यानी कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ तुझी से। नहीं, क्या मतलब हुआ कि तेरे अजाब से या तेरे गुस्से से या कोई भी जो आफत तेरी तरफ से आनी है उससे मैं तेरे ही पास आता हूँ। क्योंकि देखें, कोई दुनिया में ऐसी, इस कायनात में भी कोई ऐसी पनाहगाह नहीं है कि अगर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए तो वहाँ जाके आप छुप जाएं, या वहाँ पे जाके आपको पनाह मिल जाए, या वहाँ पे आप महफूज हो जाएं। तो तेरी पनाह में आता हूँ तुझी से। और इसमें ये इस मिसाल अल्लाह ताला के लिए तो कोई मिसाल नहीं हो सकती, लेकिन जैसा आपको समझाने के लिए सिर्फ जो मैंने ये मिसाल दी है एक माँ के साथ बच्चे के निपटने की और चिमटने की, कि अगर मारती भी जाए लेकिन तू ही है मेरी और मेरा कोई नहीं है। तो उस लिहाज से इस दुआ के अंदर ना इंसान बहुत ज़्यादा आजी और अल्लाह ताला के पास आता है कि अल्लाह ताला मैंने और कहाँ जाना है, मेरे पास और कोई जगह नहीं है। ला उहसी सना अलैका, अल्लाह उहसी का मतलब यानी गिनती, अल्लाह मैं शुमार ही नहीं कर सकता तेरी तारीफ जितनी, यानी तेरी तारीफ को मैं गिन नहीं, मैं इतनी तेरी तारीफ कर ही नहीं सकता, ये समझने। अंता कमा असनैता आला नफसिक, तेरी तारीफ तो वैसी ही है जैसी है अल्लाह तूने अपनी तारीफ खुद फरमाई है, यानी अल्लाह ताला ही अपने बारे में ज़्यादा जानता है, हम तो अल्लाह ताला को उस तरह जान भी नहीं सकते। तो अल्लाह तूने जो अपनी तारीफ़ खुद फरमाई है ना, जिस तरह तूने अपने आप को बताया है, जो तूने अपनी तारीफ़ की है अल्लाह, तू वैसा ही है, क्योंकि मैं तो तेरी तारीफ़ का अहाता कर ही नहीं सकती, मैं तो उसको गिन ही नहीं सकती, मैं तो उसको जान ही नहीं सकती, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला के बारे में सिर्फ उतना सा लिमिटेड जानता है जितना अल्लाह ताला ने उसको बता दिया। बाकी हम उसकी तारीफ़ का कैसे हक अदा कर सकते हैं जबकि हम उसके बारे में पूरी तरह कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते। तो आप इस दुआ को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये ऐसे ही है कि एक इंसान, एक बेबस और मजबूर इंसान छुप रहा है आके अल्लाह ताला की पनाह में, तेरे गज़ब से बचने के लिए तेरे ही पास आता हूँ, तेरे गुस्से से बचने के लिए, तेरी नाराज़गी से और तेरी सज़ाओं से बचने के लिए मैं तेरे ही पास आता हूँ। और आपने अपनी आजी भी दिखा दी कि मैं तो तारीफ़ कर ही नहीं सकता है अल्लाह, तूने जैसी अपनी तारीफ़ खुद फरमाई है ना, तू वैसा ही है। कितनी खूबसूरत दुआ है, तो बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप शामिल करें अपनी दुआओं में।
आज का जिक्र भी बड़ा ही खूबसूरत जिक्र है, और ये है जब आप सोने को जाएं तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक जिक्र सिखा दिया, अगर आप ये जिक्र करेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे, चाहे समंदर की झाग के ही बराबर क्यों ना हो। और ये आपको आता है, ऐसे नहीं कि इनमें से ऐसा नहीं कि जो आपको ना आता हो। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ऐसा इंसान जब ये कह के सोता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और जब आप रात को सो जाएं और आपकी आंख खुले, बहुत दफा ऐसे होता है इंसान की आंख खुल जाती है, वो बाथरूम जाने के लिए हो या फिर वो वैसे ही इंसान किसी आवाज से उठ जाता है, और बाज दफा ये भी होता है कि फिक्र इतनी होती है कि इंसान कहता है कि टाइम तो नहीं गुजर गया, तो घड़ी देखने के लिए थोड़ा आंख खोलता है। तो आप उस वक्त भी ये अगर पढ़ लें और इसके बाद जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी, यानी ये जिक्र और इसके बाद, और ये भी वो ही है लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये पढ़ लें, और उसके बाद अल्लाहुम्मग़फिरली या आपने जो भी दुआ करनी है वो आप दुआ मांग लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ कबूल होगी। लिहाजा रात के वक्त में आपकी आंख खुलती है तो मौका हाथ से ना जाने दें, जब हमारे नबी ने फरमा दिया तो ज़रूर होके रहेगा ये। और मेरी यही कोशिश होती है हमेशा रमज़ान के अलावा भी, रात के वक्त जब भी मेरी आँख खुलती तो मैं ये पढ़ के ज़रूर दुआ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मेरी दुआ इस वक्त तो बस कबूल हो जानी है। तो लेटे लेटे बैठने की भी ज़रूरत नहीं, ना कोई वुजू की ज़रूरत है, ना कोई सर पर दुपट्टा लेने की ज़रूरत है, ना कुछ है, बस आंखें चाहे बंद ही हैं उस वक़्त ही ये कह के, और बस दिल से ये कह के, और फिर उस वक़्त दुआ कर ली जाए, चाहे उर्दू में कर लें, चाहे इंग्लिश में कर लें, चाहे आप कोई मसनून दुआ करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन ये वक्त भी चूंकि कबूलियत का वक्त है और ये कहने से कबूलियत होती है, तो क्यों ना इस वक्त हम दुआ करके और अपनी जो भी हाजत है वो पूरी करवा लें। इसी तरह हमने सदका करने के बारे में हमने बात की थी, तो सदका जो है जैसे मैंने आपको बताया कि कयामत के दिन इंसान की लिए साए का भी सबब बनता है, इंसान के लिए अल्लाह ताला के गुस्से को मिटाने का भी सबब बनता है, सदक़े के ज़रिए इंसान की बहुत सारी मुश्किलात भी दूर हो जाती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों से भी वो महफूज हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, इन तुबदु सदकाती फन इम्मा ही व इन तुखफूहा व तुबदूहा अल्फुकरा फहुवा खैरुल लकुम व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी अगर तुम यानी खुलम खुला लोगों के सामने सदका देते हो या छुपा के देते हो, फुकरा की मसाकीन की हाजतें पूरी करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारी सय्यात को तुमसे दूर कर देगा। अब सय्यात के ना दो माने उलमा ने किए, एक तो आपको माना आता है गुनाह, कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा, इन गुनाहों को भी अल्लाह ताला मिटा देगा सदके के की वजह से, ठीक है। दूसरा सय्यात का माना ये भी है मुसीबतों को दूर करना, मुसीबतें, सय्यात का माना मुसीबतें, तो जब आप सय्यात कहते हैं कि युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, तो यानी अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया की मुसीबतें भी दूर कर देगा। इसी वजह से देखें जब परेशानी आती तो लोग कहते हैं सदका कर दो, तो वाकई सदका इंसान के लिए मुसीबत को दूर करता है, रद्दे बला है। लेकिन क्या जरूरी है कि जब मुसीबत आ जाए तब हम सदका करें? क्यों ना मुसीबत आने से पहले ही हम सदका करें और इस आदत को डालें ताकि हमारे पर कोई मुसीबतें आए ही नहीं। तो देखें, आप जब सदका आप करेंगे, अल्लाह ताला पहले ही मुसीबत को दूर कर देगा, पहले ही मुसीबत को रफा दफा कर देगा। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमन ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफा, खर्च करो जो अल्लाह ताला ने तुमको रिस्क दिया है उस दिन के आने से पहले जब कोई तिजारत नहीं होगी, कोई लेन देन करके या आप अपनी मुश्किल दूर करते, और ना ही कोई आपका करीबी पक्का दोस्त वहां पे कोई मिलेगा ऐसा जो आपको बचा ले, ना ही कोई शिफात करने वाला मिलेगा, तो ये सदका ही होगा जो वहां पे इंसान के लिए निजात का बाइस बन जाएगा। इसलिए अपने हाथ से दें, ये जो छोड़ के चले जाएंगे ये हमारा नहीं है, ये तो वारिसों को मिल जाना है। अगर हम अपनी इस पैसे से फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि अल्लाह ताला के पास अपनी ये इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि हमें वहां पे इसका अजर मिल जाए, और वहां पे ये इसकी वजह से हम अल्लाह ताला के अर्श का साया भी पा सकें, इसकी वजह से वहां पे हमारे गुनाह भी बख्शे जाएं, इसकी वजह से हमें अल्लाह ताला वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है बहुत इजाफा कर देता है, अल्लाह ताला बेहिसाब अता फरमा दे, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दुगना तिगना करके 700 गुना करके और उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे जिसका शुमार भी नहीं कोई इंसान कर सकता, अल्लाह ताला इतना अता फरमा दे। तो ये हम जब सदका करेंगे तब हम ये चीजें पा सकते हैं, इसलिए सदके की आदत डालिए, अपने हाथ से सदका करें, अपने बच्चों के हाथ से सदका दिलवाएं ताकि उनके ऊपर से भी मुश्किलें दूर हो जाएं, अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमसे वो आमाल करवा ले जिनसे वो राजी होता हो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।